जय माँ। प्रश्न है एक कि रुरु का प्रेम, उस प्रेम में इतनी तीव्रता, इतनी शक्ति कैसे आ जाती है? कौन सा वो प्रेम है? सावित्री के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि सावित्री का जो प्रेम है वो तो साक्षात जगत जननी है जिन्होंने अवतार दिया है, तो उसमें हमको कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं लगती है कि वो जाती हैं और मृत्यु से लड़के ले आती हैं। तो रुरु का कौन सा प्रेम है जो प्रमदवरा को वापस ले आता है मृत्यु के गढ़ से? तो पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्टिंक्शन समझ लें। शेरविन ने प्रेम और मृत्यु के ऊपर तीन मेन कविताएं लिखी हैं। एक है रुरु प्रमदवरा लव एंड डेथ, जिस पर हम एक मिनट में आएंगे। सबसे ऊपर है सावित्री। सावित्री में केवल प्रेम के घर से जाके, गढ़ से जाके सत्यवान को नहीं लाना है, उसमें मृत्यु का रूपांतरण भी है। तो वो एक कॉस्मिक एक्शन है, क्योंकि उन्होंने केवल एक सत्यवान को नहीं बचाया, उन्होंने एक संभावना क्रिएट कर दी संसार में कि मृत्यु के गढ़ से, अज्ञान अचित अंधकार से मुक्ति की वो गाथा है, ह्यूमन सोल की फ्रीडम की गाथा है। तो बहुत अलग, हाईएस्ट डायमेंशन की है। उसके पहले शेरविन ने विक्रम उर्वशी लिखी है। तो विक्रम जो पुरुरवा की कहानी है, उसमें भी वास्तव में प्रेम में विछो होता है। विछो क्यों होता है? वहां मृत्यु नहीं ले जाती है, किंतु उर्वशी को 7 वर्ष के उनके समागम के बाद, जिसमें कुछ शर्तें थी, कंडीशनल थी, और वो उर्वशी वापस चली जाती, क्योंकि वो इंद्र इस प्रकार का कुछ करते हैं कि कंडीशन ब्रेक हो जाती है। मैं कहानी के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। अब पुरुरवा बहुत विवल होते हैं इस बात से, और उर्वशी भी बहुत विवल होती है, क्योंकि प्रेम की पीड़ा है। तो उस पीड़ा को कैसे ब्रिज किया जाए? अब उर्वशी के हाथ में ये नहीं है, क्योंकि उर्वशी को तो एक वो एक और एक कष्ट है, दूसरी ओर पुरुरवा हैज रिसीव्ड हर एज ए गिफ्ट, क्योंकि उन्होंने देवासुर संग्राम में पार्टिसिपेट किया है। परंतु चूंकि पुरुरवा ने देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध किया था, इसलिए उनको उनके पीड़ा को देख के चॉइस उनको जगत जननी माँ स्वयं देती हैं। और वो क्या चॉइस देती हैं कि तुम चाहो तो सदैव अपनी प्रियतमा के साथ रह सकते हो। कहाँ रह सकते हो? स्वर्गलोक में रह सकते हो। और पुरुरवा के अंदर एक अंतर, क्योंकि वो तो एक योद्धा हैं जिन्होंने उनकी सोल ने चूज किया है धरती पर रह करके, किंतु अंततः वो स्वर्ग भोग की ओर चले जाते हैं। और फिर श्री अरविंद वर्णन करते हैं कि जब जाते हैं पुरुरवा, वहाँ पे उर्वशी, वो सब लोग, देवतागण सब हर्षित हैं कि इन दोनों का मिलन हो गया। बड़ी वो पैथोस है उसके अंदर एक, कि दोनों का मिलन हो जाता है प्रेम में, अब वो सदा सदा आनंदित रहेंगे। लेकिन धरती के अंदर एक भाव जगता है कि अर्थ एक बार फिर से अबैंडन कर दी गई है। तो आप देखें कि ये सावित्री में ये चॉइस सावित्री को भी मिलती है कि लूज दाई सेल्फ इन इन्फिनिट सत्यवान, एंड सत्यवान कैन लूज योर सेल्फ इन इन्फिनिट सावित्री। बट सावित्री इसको रिफ्यूज करती है। वो कहती है इवन एज आई हैव शर्न द इटर्नल नाइट, आई क्लाइम नॉट टू दाई एवर लास्टिंग डे, इवन एज आई हैव शर्न द इटर्नल नाइट। तो वो एक बहुत हायर चीज है जहां वो स्वर्ग भोग को रिजेक्ट करती है, क्योंकि धरती पर काम होना है। तो वहां से जो बॉडी बॉडीली वो वापस आता है सत्यवान उसी देह में, और 400 वर्षों तक रहता है। और इसमें एक इंडिविजुअल के लिए एक नई संभावना खुल गई है। श्री अरविंद ने इस पोयम को कॉस्मिक पोयम बना दिया है। एक्चुअली कहानी कॉस्मिक कहानी है, लेकिन इसको उसको उभार करके श्री अरविंद लाते हैं सावित्री में। अब रुरु प्रमदवरा का प्रेम क्या है जो लव एंड डेथ में बताया जाता है? ये कहानी भी महाभारत में आती है। तो यहां पर श्री अरविंद कहते हैं इट इज अ वाइटल लव। तो हम लोग ये सब डिस्टिंग्विश करते हैं ह्यूमन लव, डिवाइन लव। अब अलग अलग प्रश्नों के कंटेक्स्ट में माने अलग अलग उत्तर दिए हैं। एक जगह फॉर एग्जांपल, अब इसको हम जोड़ रहे हैं इससे, कि माने ये उत्तर दिया है कि मानव प्रेम में सदैव एक बिटरनेस आती है अंत में। इस तरह के कई उनके स्टेटमेंट्स हैं जहां कहती है तुम्हें ह्यूमन लव से जाना है, जा सकते हो, लेकिन ये तुम्हें अंत में बिटर करेगा। और बिल्कुल वो सही बात है, अगर हम मानव जीवन को देखें जैसा अभी बना है। यही चीज यम भी कहते हैं सावित्री को, पर सावित्री कहती है नहीं, हमारा प्रेम भिन्न है। तो यानी ऑर्डिनरी ह्यूमन लव ऐसा होता है जिसमें अंत में आपको बिटरनेस मिलती है। इसलिए कहा गया है कि अगर तुमको डिवाइन लव की ओर जाना है तो ह्यूमन लव को तुमको परित्याग करना पड़ेगा। ये मतलब ह्यूमन लव से यहाँ मतलब है माँ का, जो साधारण जीवन में जो प्रेम होता है प्राणिक प्रेम, आवेग, पैशन, लेन देन का व्यापार, कारोबार, ईगो की तुष्टि, उसका हर्ट होना, ये अंत में बिटरनेस लाता है। तो उस तरह के प्रेम को तिरस्कार कर दिया जाए। वहीं माँ एक चीज और लिखती हैं, मैं कुछ जस्ट रैंडम जो मुझे स्मरण है, एक चीज और लिखती है कि जब भी मानवीय प्रेम की कहानी में चैत्य जुड़ गया है, वेयर एवर देयर हैज बीन द साइकिक टच इन ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन लव, इट हैज बिकम ब्यूटिफुल। तो वो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है, अब वो भी ह्यूमन लव है। तो ये ह्यूमन लव एक वैरायटी में नहीं आता है, पहली चीज हमको ये समझनी है, इसके कई ग्रेडेशंस हैं। ये भी माँ कहती हैं, एक जगह कहती हैं, इट इज वेरी सिंपल माय चाइल्ड, डोंट यू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव द कॉन्शियसनेस ऑफ एन एनिमल, योर लव विल बी लाइक एन एनिमल। इफ योर कॉन्शियसनेस इज लाइक ए ह्यूमन, योर लव विल लाइक ए ह्यूमन। इफ योर कॉन्शियसनेस इज गॉड लाइक, योर लव विल बी लाइक ए गॉड। एंड वी कैन एक्सट्रापोलेट, इफ योर कॉन्शियसनेस इज डिवाइन, योर लव विल बी लाइक ए डिवाइन। कई बार लोग जैसे समझ नहीं पाते हैं, ये पूछते हैं, आज भी किसी ने प्रश्न किया कि ये देवताओं की कहानी में कि वो मुग्ध हो गए और किसी, उनके तो ऑलरेडी लक्ष्मी जी हैं, तो विष्णु भगवान क्यों चले जाते हैं किसी से प्रेम करने, या कृष्ण जी की एक कहानी आती है, वो बड़ा फेमस टेम्पल है जिस पर डांस भी है, मैं भूल रहा हूँ, सदर्न स्टेट्स का एक कहानी है जिसमें वो इतनी भक्ति करने लगी कृष्ण जी की, कृष्ण जी आ गए वेंकटेश के रूप में, वो वहाँ विराज गए, और वो कहानी बड़ी रोमांटिसाइज्ड है कि वो जब द्वार बंद होते हैं, डिवोटीज उनको ऑफर कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन कृष्ण जी बीच बीच में देख रहे हैं, उसको नाम भूल रहा हूँ मैं, उनकी जो भक्त है जो बैठी हुई है, और प्रतीक्षा करें कि कब मेरा द्वार बंद हो, ये भीड़ जली जाए, सो दैट आई कैन मीट हर। Now, ये हमको ये समझना है कि ये ह्यूमन माइंड ने एक कहानी की सुंदरता को वाइटल बना दिया। और श्री अरविंद ये बताते हैं कि गोप गोपियों की जो लीला है, कहती है ये बड़ी सुंदर चीज है जिसको ह्यूमन वाइटल ने रोमांटिसाइज कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये भी टच कर दें कि रोमांस की क्या इसमें रोमांस का, आप देखोगे गोपियों के साथ प्रेम में भी आधी रात को कोई नहीं जानता है। ये एक जो चार्म होता है हिडन का, कि ये आपका प्रेम है जो किसी को नहीं पता है, ये आपके और उस व्यक्ति के बीच में है जिसको बाहरी जीवन बड़े भद्दे ढंग से प्रस्तुत करता है। पर शिरविंद कहते हैं कि टू क्रिएट अडल्ट्री विद गॉड, दिस वर्ल्ड वॉज परफेक्टली क्रिएटेड। एक जगह वो कहते हैं मोनोगैमी इज गुड फॉर द बॉडी बट फॉर द इटर्नल द सोल इन मैन हु लव्स गॉड इज द इटर्नल पॉलीगैमिस्ट। और माता जी इसके कंटेक्स्ट में, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है बट यू विल फाइंड इट इज द सेम मीनिंग, माता जी इस कंटेक्स्ट में कहती हैं, शोबिंदो एज ए चार्मिंग एक्सप्रेशन बाय विच वो जो हमारे सारे मॉरल नोशंस हैं ही डिस्ट्रॉयज इट। अब इन सब चीजों का अगर तुम जोड़ो, ये कोई शेरविंद ये नहीं कह रहे कि वन शुड बिकम पॉलीगैमिस्ट इन दैट सेंस, पर अब देवता लोग क्या होता है, वो जहां भक्ति है, जहां पर सेल्फ गिविंग है, वो उससे मूव्ड होते हैं। ये उनकी माया इस तरह की है, माया में वो भी बंधे हैं, पर वो माया उनको कैसे बांधती है, देवताओं का काम ही धरती से बंधना है, नहीं तो वो काम कैसे करेंगे। देवता थोड़ी कोई समाधिष्ट होते हैं, देवता तो कॉन्स्टेंटली एट लेबर इन क्रिएशन है। तो जहां उनको भक्ति, सच्ची भक्ति, जहां उनको सेल्फ गिविंग, जहां उनको त्याग, जहां उनको तप, ये सब दिखाई देता है, वो वहां खींचे चले जाते हैं और वहां बंध जाते हैं। अब नेचुरली ये लक्ष्मी जी को तकलीफ होगी अगर तुम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बट लक्ष्मी अंडरस्टैंड शी इज द इटर्नल कंसॉर्ट, कोई लक्ष्मी को का स्थान थोड़ी ले सकता है। लेकिन जब वो मानवीय देह में लीला करते हैं, जैसे रुक्मणी लक्ष्मी जी हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शी यूज्ड टू सफर फ्रॉम समटाइम्स फ्रॉम पैंग्स ऑफ जेलसी, क्योंकि आप मर्द शरीर धारण करते हो तो मर्द समस्याएं आती हैं। अब ये बड़ा एक ट्रांजिशन पॉइंट है फ्रॉम हियर टू रूरू की कहानी। तो रूरू की कहानी में क्या है, रूरू की कहानी में भी ह्यूमन लव है। अब वो लव एकनिष्ठ है कि नहीं, ये नहीं बताया जाता है, क्योंकि अगर आप भारत का इतिहास देखेंगे या किसी भी संसार का इतिहास देखोगे, सब लोग एडवोकेट करते हैं मोनोगैमी, लेकिन अगर आप इतिहास देखोगे तो अपार्ट फ्रॉम श्री राम, दैट्स वाई राजा राम इज अमेजिंग, आपको कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। और मोनोगैमी की प्रैक्टिस केवल और केवल ब्राह्मणों के लिए बताई जाती थी, क्योंकि उनको तपोनिष्ठ होना था, क्षत्रिय वैश्य शूद्र नन ऑफ देम, बिकॉज दैट्स हाउ ह्यूमन नेचर बायोलॉजी से उभर के आया। तो अब इस बैकग्राउंड के साथ अब रूरू की कहानी समझे। रूरू की कहानी वाइटल लव की कहानी है, प्राणिक आवेग है, लेकिन हमको लगता है वाइटल मतलब सब गंदा है, सब खराब है, लेकिन वाइटल के अंदर एक कैपेसिटी होती है सेल्फ गिविंग की, जो इतनी अद्भुत है कि जो देवत्व को भी खींच लाती है जमीन पर। ये शेरविन जब किंगडम्स ऑफ ग्रेटर लाइफ, जहां आप वाइटल की एक ऊंचाई को देखोगे एंड इवन ग्लोरी एंड फॉल ऑफ लाइफ, तो वहां पे प्राण के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि या तो वो सब कुछ अपना खो देगा प्रेम के लिए, या उसका जो विकृत रूप है पाने के लिए वो सब कुछ कर सकता है। और ये कई जगहों पर अमल किरण थे, किसी ने उनको लगा कि मैं तो बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ इस कारण मुझे इस योग में एंट्री मिला है, तो उन्होंने पूछा श्री अरविंद से, कहते नो इट इज़ बिकॉज ऑफ योर वाइटल। वाइटल उनमें उनके बड़े डिफेक्ट थे, लेकिन उनके वाइटल में एक चीज़ थी जो वो अपनी एक टॉक में लिखते हैं। कहते 5-7 साल की उम्र से मेरे साथ ऐसा था कि कोई भी सुंदर चेहरा देखा मैं आई वुड फॉल इट फॉर अबू, जो भी इसका मतलब। कहते लेकिन इस चीज ने मुझे एक समय, इसी के कारण जब मैंने डिवाइन मदर को देखा तो मैंने अपना सर्वस्व उनके चरणों में डाल दिया। तो अब अगर भगवान की लॉजिक ऐसे नहीं होती है ह्यूमन लॉजिक और ह्यूमन फ्रेमवर्क में, अब ये मूवमेंट केवल वाइटल कर सकता है या साइकिक कर सकता है, माइंड कभी नहीं कर सकता है। जिन लोगों के अंदर माइंड बड़ा प्रबल होता है ना, वो ये चीज नहीं कर पाएंगे, वो कैलकुलेट करेंगे भगवान की ओर ऐसे नहीं, ऐसे डिसिप्लिन, ऐसे सिखाए हुए तरीके से। पर जिनमें प्राण की कभी एक अतिशयता होती है, उसमें एक पूर्ण त्याग का एक कैपेसिटी होती है। ये हम रुरु और प्रमद्वरा की कहानी में देखने को मिलते हैं। इसके पहले कि हम, या चलो हम उस चीज को लास्ट में टच करेंगे, तो कहानी क्या है? कहानी हम सब जानते हैं, प्रेम और मृत्यु, ये लव एंड डेथ पोयम है, शेरविन की लॉन्ग पोयम है, जिसमें रुरु एक ऋषि पुत्र हैं, भृगु के ग्रैंड चाइल्ड हैं, और ये जो हैं ये एक टाइटनस की बेटी है। मतलब तो ये जो आइडिया कि नहीं नहीं भारत में बड़े वो सेम वर्ण में विवाह होता था, ये दिस ऑल ये महाभारत की कहानी है। एक राक्षसी, राक्षस कुल की कन्या का एक ऋषि कुल के पुत्र से विवाह होता है, और ऐसा रावण के केस में भी हम देखते हैं। और बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें, मंदोदरी को अगर आप देखेंगे, हालांकि वो राक्षस कुल की है, पर मंदोदरी का चरित्र इतना अद्भुत है कि वो पंच पूज्य कन्याओं में से है। तो ये जो हम लोग अब जो हिंदुइज्म बन गया, जिसमें हमने बहुत सारी एक सीमा बना दी, जिसका कारण था, हम उसमें नहीं जा रहे हैं अभी, ये हिंदुइज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सनातन धर्म की जो समझ थी। तो ये एक टाइटनस है, एक राक्षस कुल की कन्या, और ये एक ऋषि कुल के हैं। तो ये एक यूथफुल हैं, और ये नहीं कि ये ऋषि हैं, लेकिन इनके अंदर एक ऋषित्व तो है ही, जन्म से हैं जो उनके अंदर टेंडेंसीज हैं। और इनका प्रमदवरा के साथ एक बड़ा ही प्राणिक प्रेम है, प्राणिक आकर्षण है, प्राणिक प्रेम है, लेकिन नियति को कुछ और स्वीकार है। और यंग एज में दोनों नदी के किनारे गए हैं, और वहां पे एक सांप के डसने से प्रमदवरा की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है, आमतौर पे प्राणिक प्रेम क्या करता है, कुछ दिन रोता भी लगता है, फिर कोई नई तरफ ढूंढ लेता है। ये साधारण मानव प्रेम की गति होती है, मृत्यु ही नहीं, जीवित रहते ही ढूंढ लेता है। तो ये एक साधारण प्राणिक प्रेम है। लेकिन ये जो है रुरु, प्राणिक प्रेम है, लेकिन उसकी अतिशयता, उसकी सुंदरता, उसके अंदर जो केवल इंटेंसिटी नहीं है, उसके अंदर एक इटर्निटी की लॉन्गिंग है। प्रेम के अंदर ये दो चीज़ें होती हैं, इंटेंसिटी वो सीख करती है, तीव्रता, और उसमें जो उसको जॉय मिलता है, और जो इटर्निटी की लॉन्गिंग होती है कि सदा रहे। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ मानव प्रेम में लगभग नहीं मिलती हैं। आपको इंटेंसिटी मिलती है तो कुछ समय के बाद वो डिप कर जाती है, और इटर्निटी अगर मिलती है तो अच्छा ठीक है, हम तो साथ ही हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लव, क्योंकि इंटेंसिटी इज ए नैरोइंग मूवमेंट, इटर्निटी इज ए वाइडनिंग मूवमेंट, तो ये दोनों एक साथ नहीं देखने को प्राय मिलता है। एक कहानी जो मैं जानता हूँ वो है राधा कृष्ण की, श्री राम सीता की, और महर्षि अरविंद की। ये तीन कहानियों में आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, और अगेन उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। रुरु प्रमद्वरा, तो इंटेंसिटी है जिसके कारण उनको वियोग और विषोह और पीड़ा होती है, और साथ में इटर्निटी की चाह है, ये नहीं होना चाहिए। तो अब रुरु जो पीड़ा अनुभव करते हैं, वो वियोग उनका योग में बदलता है। और देखा जाए तो गीता में भी हम देखते हैं कि अर्जुन का विषाद योग में बदलता है, लेकिन वो एक अलग डोर है, क्योंकि अर्जुन को पहले ज्ञान कि मुझे करना क्या है, लेकिन वो विषाद योग में बदल देते हैं भगवान श्री कृष्ण। यहां पे वो वियोग की अग्नि में जल रहा है, तो कौन जल रहा है? प्रेम। और जब भी कोई भी ह्यूमन मूवमेंट, आप जलना क्या है? तप है, कहते भी ना वियोग की अग्नि। और वियोग की अग्नि क्या होती है? वियोग की अग्नि एक प्रकार का तप है, तो वो तप रहा है उसके अंदर और इतना तपता है, इतना तपता है। अब पृथ्वी के अंदर कुछ लॉज ऑपरेट करती हैं कि कुछ दिनों बाद ये कहीं और चला जाएगा, अब वो जाता नहीं है, तो सबको परेशानी हो रही है। देवताओं ने, आपने संतुलन बिगाड़ दिया ना सृष्टि का। भगवान ने संसार के, या रादर विधाता ने जैसे लॉज बनाई हैं ऑपरेटिंग, इसके अंदर चेक्स बैलेंसेज नॉर्मल प्रोसेस है कि आपको हर्ट होता है कुछ दिन बाद, तभी कहते हैं ना टाइम टाइम विल हील इट। इसलिए शेरविंद एक जगह उनकी पोयम है इमॉर्टल लव, उसमें वो वर्णन करते हैं जहाँ वो कहते हैं कि यदि मैंने केवल तुम्हारी बाहरी सौंदर्य मुख की शोभा और केश राशि के लिए प्रेम किया होता तो हे प्रियतमे कुछ दिनों बाद मेरा प्रेम समाप्त हो जाता। यदि मैंने तुम्हारी मधुर वाणी और तुम्हारे गुणों के लिए प्रेम किया होता तो भी संभव है कि काल की गति एक दिन उसको पहुँच जाती और खा लेती, लेकिन मैंने तुमको ऐसे प्रेम किया है कि जैसे मैं स्वयं को करूं, मैंने स्वयं को तुम में देखा है, तो इसीलिए मैं तो अपने से तो अलग नहीं हो सकता। तो टाइम आई एक्सीड, चेंज आई एक्सीड एंड एम फॉर टाइम प्रिपेयर्ड। क्योंकि जब आप स्वयं, आप खुद से हाउ विल यू डिसोशिएट फ्रॉम योरसेल्फ, या बात उस योग की नहीं हो रही है, ईगो सेल्फ उसकी बात नहीं हो रही, बट योर हाईएस्ट सेल्फ, तभी आप स्वयं को उसमें। और इसीलिए शेरविंद कहते हैं ऑल लव when it changes into adoration has a spiritual force in it। ये synthesis of yoga का वाक्य है कि अगर उसके अंदर ये जो एक adoration का भाव आ जाए, जो आप देखेंगे कि प्रेमिका के प्रति या प्रेमिका का प्रेमी के प्रति एक adoration का भाव, बहुत रेयर है ये मूवमेंट, ज़्यादातर तो ईगो का भाव होता है, तूने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने तेरी नहीं, क्यों सुनूंगी। लेकिन जहां एडोरेशन आ जाता है, जो हम कभी कभी सती के आइडियल में देखते हैं, तो आप देखोगे उसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति अपने आप आने लगती है। प्रेम तो एक ही है, अब वहां पर हम आए कि अलग अलग प्रेम हम कह रहे हैं, प्रेम तो एक ही है, लेकिन वो यहां आके जैसे गंगा गोमुख से गंगा सागर रास्ते में मैली हो जाती है, तो प्रेम या तो बड़े नैरो मूवमेंट में जा सकता है या वाइड मूवमेंट में जा सकता है। तो यहाँ पर रुरु की जो वियोग है उसको संताप जो है, ताप, देखिए वर्ड कितना सुंदर है, संताप, ये केवल पीड़ा नहीं, ये संताप है, मतलब वो उसका माइंड अब फोकस्ड हो गया है केवल और केवल प्रमद्वरा, मतलब उसकी वो अवस्था है कि केवल वो प्रमद्वरा प्रमद्वरा ऐसा कहता हुआ घूम रहा है, मानो उसी के बारे में मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। तो प्रमद्वरा कौन है? साधारण ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसके हृदय में कौन सा भाव जगाए, प्रेम जगाए। इसलिए श्रीविंद कहते हैं कि इवन एक इन्फीरियर गुरु, अगर तुम उसको भगवान के रूप में देखने लगोगे तो तुमको भगवान वो अनुभव दे देंगे। तो वो जब करने लगता है ये संताप, तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। यू आर नॉट सपोज, ह्यूमन बींग्स आर नॉट सपोज टू एक्सपीरियंस इट। तो देवता पहले कहते हैं, वृक्ष को भेजते हैं, वृक्ष को इंस्पायर करते हैं अपनी हवा के झोंके से, जरा इसको इसका ताप हर लो। तो थका हुआ लेट गया, वो कौन सा वृक्ष है? हाँ, तो उस वृक्ष, हाँ, अश्वत्थ पीपल का पेड़ है, तो उसके नीचे वो बैठ करके, वो भी इंटरेस्टिंग है अश्वत्थ ट्री, तो वैसे ही, तो वो नीचे में वो बहुत तप्त दग्ध हृदय है उसका, थोड़ा सोता है, तो वो देवताओं के इंस्पिरेशन से वो पेड़ अपनी पत्तियों को हल्का उसके ऊपर, कि भाई इसके ताप को शांत करो। क्यों तपस्या भंग करने के लिए प्रयास किए जाते हैं? क्योंकि ये इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है, कलेक्टिव इवोल्यूशन इसी कारण है, क्योंकि इंडिविजुअल तपस्या हमेशा कठिन होती है, लेकिन अगर कलेक्टिव इवोल्यूशन होए तो वो चेंज ओवर हो जाता है। खैर, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, कुछ सीड आइडियाज इससे निकलते हैं। तो जब वो पेड़ ऊपर में कर रहा है तो इसको ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमद्वरा आ गई है और वो गोद में लेकर के या अपने हाथों से, अपने पल्लू से उसको पंखा जैसा झल रही है, पसीना पोंछ रही है। तो उसको कुछ देर के लिए मन में जॉय आता है नींद में, और फिर उसकी आँख खुलती है, आँख खुलती है तो देखता है तो नहीं है, और पेड़ पर दृष्टि जाती है तो वो इतना फोर्स से उसके अंदर, जो तीव्रता से वो प्रेम की अगर निकलती है कि वो जल जाता है। दैट इज द पावर, दैट सो इट्स टू टेल यू द इंटेंसिटी ऑफ हिम हिज लव। तो जब ये प्रेम के देवता मूव्ड होते हैं सबसे पहले कि भाई ये तो मेरा डिवोटी है ये तो ये प्रेम की, किसी ने मुझसे पूछा कुछ दिन पहले, क्या प्रेम एक पथ और गंतव्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आसान नहीं है ये रास्ता, आग का दरिया डूब के जाना है। और एसेंट टू ट्रूथ में माँ बताती है अपनी स्टोरी में, एक तो फिलेंथ्रोपिस्ट है, एक साइंटिस्ट है, एक और कोई है, ये तीनों तो लोअर लेवल्स पे रुक जाते हैं, फिर एक युगल जोड़ी है और एक सन्यासी है। सन्यासी एक जगह जाके आइसोलेशन में रुक जाता है और युगल जोड़ी काफी ऊपर जाके फिर वो रुक जाते हैं, बिकॉज दे फाउंड देयर डिलाइट। फिर एक साधक और साधिका, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो उसको भी क्रॉस करते हैं और तब आता है स्टेप एंड ऑल इज स्काई एंड गॉड। इफ यू रीड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हाई शी हैज रिटन ए साधक एंड साधिका टुगेदर। वहां एक नहीं है, वहां कुछ और हैं साथ में, इट्स लाइक ए ग्रुप सोल। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो कहानी। तो रुरु के इस प्रेम से प्रेम के देवता मूव्ड होते हैं, हम कामदेव कह लें, तो वो आते हैं, मदन अनंग वो आते हैं, कहते हैं कि मैं तो प्रसन्न हो गया, नियति का मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुमको यम के पास जाने का वरदान। तो वो प्रेम का पुष्प देते हैं, लव, वो रोज, रोज इज ए फ्लावर ऑफ लव, ये शेरविंद भी कंफर्म करते हैं, इसे डेथलेस रोज आप सावित्री में भी पढ़ेंगे। तो वो उसको लेकर के वैतरणी जो होती है, जो सेपरेट करती है इस जगत को दूसरे जगत से, तो वो गहराई में जाते चले जाते हैं, या गंगा, उसमें वो गहराई में जाते चले जाते हैं, और वहाँ पे वो अब यहाँ पे आंतरिक चेतना की ये यात्रा है। और मेरा ये मानना है, क्योंकि वो बाद में आंखें खोलते हैं, कि वो पुष्प को लेके प्रेम के देवता उनको एक जैसे मैजिकली वो एक इनर स्टेट में चले जाते हैं, और वहाँ वहाँ पहुँचते मृत्यु के द्वार पर। तो कहते हैं, तो नियम बदल नहीं सकता मैं, तो वो देखते हैं उसकी व्यथा, कहते हैं देखो व्यथा से देवता नहीं पसीजते, प्रेम का देवता तो ठीक है लेकिन कोई नहीं पसीजता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रेवलेशन हुआ था मुझे पढ़ के, आप रो रहे हो बिलख रहे हो इससे वो नहीं पसीजते हैं। देवता किससे पसीजते हैं, किससे वो द्रवित होते, त्याग सेक्रीफाइस से, यज्ञ से। वो तो रोना तो कोई भी रो देगा, लेकिन आप उनको बोलो मैं रो रहा हूं, अरे मेरे साथ ये क्यों कर दिया तुम, एक साधारण एग्जाम्पल ले रहा हूं कि किसी की मृत्यु हो गई, आप भगवान से रो रहे हो या जिससे भी रो रहे हो, और आगे अच्छा ठीक है ऐसा करें उसके बदले तुम्हें ले चलते हैं, देखिए फिर क्या रिएक्शन होगी। मतलब आप त्याग नहीं करना चाहते हैं, आप बस चाहते हो एक्वायर करना। तो पहला क्लू देते हैं मृत्यु की, देखो तुमने इंटेंसिटी है, कंसंट्रेशन है, प्रेम है, त्याग कहाँ है, बिना त्याग के तुमको ये वापस नहीं हो सकता, क्योंकि यही विधान है, सेक्रीफाइस के विधान पर ये संसार बना है। अब यहां पर सेक्रीफाइस का एक प्राण के लेवल पर, ये आप देखें सेक्रीफाइस में एक स्पिरिचुअल पावर होती है। तो उन्होंने, वो पूछते हैं कि क्या मुझे देना पड़ेगा, मैं तैयार हूं, कहते हैं आधा जीवन। वो कहते हैं सहस्त्र, कहते हैं रुको रुको रुको, आधा जीवन देने का अर्थ जान लो। तो वो रुरु को दिखाते हैं कि अगर तुम ये पूरा जीवन जीते तो तुम ऋषित्व की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करते। तो जब तुम कहते ना आधा जीवन देना, मतलब उस जीवन में जो तुम्हें अनुभव होने वाले थे वो भी तुम प्राप्त करते, तुम उन सब को छोड़ दे हो। बात केवल फिजिकल नंबर ऑफ डेज की नहीं है, कि तुम्हारी नियति तो ये थी, जैसे पुरुरवा के केस में तुम्हारी नियति तो थी कि तुम धरती पर देवासुर संग्राम में पार्टिसिपेट करो, सावित्री को भी जो टेम्पटेशन, तो रुरु को भी ये कहा जाता है तुम्हारी नियति थी ऋषित्व की उच्चतम अवस्था, तो फिर भी क्या तुम त्याग करोगे वो सब? और रुरु कहते हैं हाँ, सोल हाँ, हर्ड, आधा जीवन वो दे जाते हैं। तब वो कहते हैं अब तुम प्रमद्वरा को ले जा सकते हो, तो प्रमद्वरा को वो ले जाते हैं। तो अब श्री अरविंद रुरु, ये तो उन्होंने स्टोरी में मेंशन किया, फिर एक जगह उपनिषद की राइटिंग्स में श्री अरविंद बताते हैं कि लव की पराकाष्ठा, वो पैसेज इज वर्थ रीडिंग, मैंने कभी पढ़ा भी है उसको यहाँ पे सनातन धर्म के टॉक्स में, ये ईशावास उपनिषद में है, गुरु स्टूडेंट संवाद। तो वहाँ वो बताते हैं कि प्रेम कितने प्रकार का होता है, कहते हैं आमतौर पर लोग अमूमन प्रेम को वो समझते हैं जो एक सेंसरी ग्रेटिफिकेशन और वो फिजिकल सेटिस्फैक्शन को, कहते हैं मैं भी एक समय ऐसा ही समझता था, गुरु कह रहे हैं। फिर लेकिन इसके आगे एक और प्रेम होता है, यदि यही होता तो फिर एक प्रेम जो गुणों से आकर्षित होता है, फिर कहते हैं इसके आगे एक और प्रेम होता है जिसके अंदर एक मेंटल इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप की चाह होती है। फिर कहते हैं इसके आगे एक और प्रेम होता है और उसको डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा है वो प्रेम जो एक अनंत ऊंचाई से बिल्कुल नीचे की ओर गिरता चला आता है उठाने के लिए। ये तो भगवान करते हैं लेकिन मनुष्यों में यह प्रेम है। आप एग्जाम्पल एक देखेंगे और वो एग्जाम्पल है श्री अरविंद मृणालिनी देवी का। कोई मैच नहीं है कहीं से, मतलब कहां श्री अरविंद, किस हाइट पे वो है। और मृणालिनी देवी एक सीधी साधी गांव की लेडी है जो कुछ शायद एक मतलब दिखाते हैं उनके जीवन में, वो कह रही है मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए, वो कहते हैं तुम्हें जो तुम्हारे सलाहकार हैं उन्होंने तुम्हें मिसगाइड कर दिया है, जीवन का ये ध्येय नहीं है जीवन, तुम चलोगी मेरे साथ मेरी संगिनी बनकर तुम्हें सब शक्ति मेरी शक्ति बन सकती हो, यहां तक वो कहते हैं, कहते कि तुम चलोगी मेरे साथ मेरी संगिनी बनकर तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल तुमको अपने आप को समर्पण करना है सच्चे भाव से, बाकी सब भगवान करेंगे, इतना तक कहते हैं। खैर उनके जीवन में जो भी होता है लेकिन उन्होंने कभी मृणालिनी देवी का परित्याग नहीं किया। अब ये देखो कैसा वो प्रेम है, कहाँ श्री अरविंद और कहाँ मृणालिनी देवी, ये प्रेम मतलब वास्तव में ये दिव्यत्व ही कोई चीज है जो अपने अंदर कर सकता है। वो हम रुरु के अंदर एक देखते हैं कि वो जो वो त्याग कर देता है अपने ऋषित्व की ऊंचाई को त्याग कर देता है उस प्रेम के कारण, इट इज वेरी पावरफुल। और उस त्याग के कारण यम अपना विधान बदल देते हैं, किसके लिए, रुरु के लिए। अंत में भविष्य में क्या होता है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये पैसेज की जो बात हो रही है उसमें लास्ट में श्री अरविंद कहते हैं से नॉट दैट सच ए लव डज नॉट एग्जिस्ट। लोग कहते हैं ये तो केवल कल्पना है, कहते हैं हिस्ट्री, एग्जैक्ट वर्ड्स आई डोंट रिमेंबर, कहते हैं हिस्ट्री मॉक्स एट जजमेंट्स पास्ड बाय ह्यूमन बींग्स कि भाई ऐसा प्रेम तो एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर वो उदाहरण देते हैं, उदाहरण किसके देते हैं, कहते हैं राम एंड सीता कौमा सावित्री कौमा रुरु। आप देखिए सावित्री में वो सावित्री एंड सत्यवान नहीं कह रहे हैं, रुरु में रुरु एंड प्रमद्वरा नहीं कह रहे, इट इज ए वन साइडेड लव। प्रमद्वरा ऑफ कोर्स मस्ट हैव बीन हैप्पी एंड एवरीथिंग, इट्स ए वन साइडेड लव ऑफ रुरु फॉर प्रमद्वरा। तो इसमें प्राण का प्रेम है, प्राण अपने उस आवेग में सब कुछ त्याग देता है और उस त्याग और उस यज्ञ में उसके विरह वेदना में भी एक तप है और वह तप का हमेशा आदर होता है। भगवान तप का, भगवान मॉरल नोशन से नहीं एक्ट करते हैं, तप जिसने किया उसको वरदान प्राप्त होता है। ये नहीं कि भाई ये जयद्रथ तो कुछ और कर देगा, कर सकता है भगवान, लेकिन ये भी कर्मिक लॉ का नियम है कि आप तप करोगे तो उस तप का जिस ऊंचाई पर जाएगा तो आपको उसका वरदान मिलेगा, उसके बाद उससे जो कंफ्यूजन होगा भगवान उसको सॉर्ट आउट करेंगे, वो एक अलग बात है। तो तप के रिजल्ट में वो वरदान उनको मिलता है, रुरु को, और प्रमद्वरा वापस आती है। अद्भुत कहानी है प्रेम की, वेरी पावरफुल, लव एंड डेथ।